बोर्ड के दरवाजे पर खड़ी अरुणिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद ये दरवाज़ा खुल जाए और उसकी माँ एक बार फिर उसे बचपन के उन दिनों में ले जाए जब वो उसकी परवाह करती थी, उससे प्यार करती थी। उस दरार को जो उनके रिश्ते में आ गई थी वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम सोचते हैं कि काश हमारे पास एक टाइम मशीन होती और हम समय में पीछे जा पाते। अगर ऐसा होता तो जो चीज़ें खराब हुई हैं उन्हें सुधार लेते। अरुणिमा अपनी जिंदगी में उस दिन जाना चाहती थी जब उसने आस्तिक से शादी के लिए हाँ कही थी। वो बस अपनी पूरी जिंदगी में उस दिन को सुधारना चाहती थी, उसे जीना ही नहीं चाहती थी। अगर ऐसा होता तो सब कुछ ठीक होता, वो अपने माता पिता के साथ होती, सब लोग पहले की तरह ही रहते। पर अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये सब हमारी कल्पना ही हो सकती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जो बीत गया वो बीता हुआ वक्त ही था, ना उसे सुधारा जा सकता है ना बदला जा सकता है। अरुणिमा दरवाजे से टिक कर खड़ी थी और वो अपने साथ साथ अपने परिवार के दर्द को भी महसूस कर सकती थी। ये समय कुछ ऐसा था जब वो ना तो कुछ सोच पा रही थी ना समझ पा रही थी। पर तभी अचानक किसी ने उसे खींच लिया। वो एकदम चौंक गई क्योंकि इसके लिए तैयार नहीं थी और ना ही उसे ऐसा कुछ होने की उम्मीद थी। उसने देखा आस्तिक ने अपने मजबूत हाथों से उसे खींच लिया और अगले ही पल दूसरी दीवार से लगा दिया। अरुणिमा एकदम घबरा गई। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और वो डरी हुई नज़रों से आस्तिक को देख रही थी। पर आस्तिक ने बिना किसी चेतावनी के अरुणिमा के होठों पर झपट्टा मार दिया। अरुणिमा एकदम हैरान रह गई। उसके होठ अचानक आस्तिक के कब्जे में आ गए थे और आस्तिक ने अपनी जुबान उसके मुंह के अंदर तक डाल दी थी। वो उसके मुंह का पूरा स्वाद ले रहा था, लेकिन अरुणिमा को घुटन महसूस हो रही थी। उसे अपने मुंह में सिगरेट की भारी महक महसूस हो रही थी। अरुणिमा को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। वो इस वक्त अस्पताल की लॉबी में थी और वहां सिक्योरिटी भी मौजूद थी। हालांकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि चेहरा उठाकर देख सके, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें अंदाजा नहीं हो रहा होगा कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। अरुणिमा बुरी तरह घुट रही थी। एक तो आस्तिक के मुंह से आई सिगरेट की वो भारी महक उसे इरिटेट कर रही थी और दूसरा आस्तिक उसे सांस भी नहीं लेने दे रहा था। बुरी तरह उसे चूमने के बाद आस्तिक आखिरकार उसके होठों से अलग हुआ। वे दोनों बेदम होकर तेजी से सांस ले रहे थे। आस्तिक उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखते हुए सरूर में डूबे लहजे में बोला, जब से तुम्हें साड़ी में देखा है तब से मेरा बस एक ही मन कर रहा है कि जल्द से जल्द तुम्हारी साड़ी को तुम्हारे बदन से अलग कर दूं, और अब इससे ज्यादा मैं खुद को रोक भी नहीं पाऊंगा। अरुणिमा का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी। लॉबी में कोई नहीं था, लेकिन दूर दो सिक्योरिटी गार्ड थे जिनका चेहरा दूसरी तरफ था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। बेशक सामने वाला आदमी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के अलावा और किसी चीज की परवाह नहीं करता था, लेकिन अरुणिमा के अंदर तो अभी भी थोड़ी शर्म बाकी थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ झुका लिया। आस्तिक ने अरुणिमा की कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ खींचते हुए लिफ्ट की तरफ ले जाने लगा। उसने अरुणिमा की माँ और पिता को आखिरी बार मिलकर उनसे विदा लेना भी जरूरी नहीं समझा। इस आदमी को अपनी जरूरत के आगे शिष्टाचार की कोई परवाह नहीं थी। लिफ्ट बंद होते ही आस्तिक ने अरुणिमा को अपनी तरफ खींच लिया और उसके कॉलर बोन पर अपने दांत रख दिए। अरुणिमा ने अपने दांत भींचकर अपनी सिसकियों को अपने अंदर ही दबा लिया, लेकिन आस्तिक धीरे धीरे उसकी कॉलर बोन पर अपने नुकीले दांतों से निशान बना रहा था। आस्तिक के हाथ अरुणिमा की कमर से होते हुए उसके ब्लाउज तक पहुंच गए। उसने अरुणिमा की पीठ पर हाथ रखा तो उसकी उंगलियों में ब्लाउज की डोरी आ गई। वो उसकी डोरी को उलझाते हुए खोलने की कोशिश कर रहा था। अरुणिमा संघर्ष तो कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि जितना वो इससे बचने की कोशिश करेगी उतना ही इसमें और ज्यादा फंस जाएगी। आस्तिक उसकी डोरी को खोलने की नाकाम कोशिश कर चुका था। एक तो वैसे ही ये आदमी अपने सब्र की हद को पार कर रहा था, ऊपर से ये डोरी उसे और ज्यादा बेसब्र कर रही थी। वो झुंझलाते हुए अरुणिमा से अलग हुआ और बोला, आज के बाद तुम ऐसे डिफिकल्ट ब्लाउज नहीं पहनोगी। ये तुम्हारे ब्लाउज में जो रस्सी बंधी हुई है बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह है, एकदम उलझी हुई। उसे डोरी कहते हैं, अरुणिमा डरते हुए बोली। तो आस्तिक ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी डोरी खोलने के लिए डोरेमोन से गैजेट मंगवाऊं? एक बार मना कर दिया ना, अब से ऐसे डोरी वाले ब्लाउज नहीं पहनोगी। पहनना है तो सिंपल ब्लाउज पहनो जिसे खोलना आसान हो। स्पाइडर का वेब बना रखा है पूरा, इतना मुश्किल तो किसी लॉकर का पासवर्ड खोलना भी नहीं होता। अरुणिमा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसे पता था कि आस्तिक में जरा भी पेशेंस नहीं है, लेकिन वो इतना बेसब्र होकर बात करेगा ये उसने नहीं सोचा था। सिर्फ एक ब्लाउज की डोरी के लिए इतना बड़ा लेक्चर। उसने कोई शौक से ब्लाउज में डोरी नहीं लगवाई थी, वो तो सूट पहनकर आने वाली थी। लेकिन आस्तिक को अपनी रेपुटेशन मेंटेन करनी थी, इसलिए अरुणिमा को थोड़ा डिजाइनर ब्लाउज पहनना पड़ा। हालांकि इस वक्त अरुणिमा अपने इसी उलझे हुए ब्लाउज का शुक्र मना रही थी, क्योंकि आस्तिक ने उसे लिफ्ट में छोड़ दिया और खुद दूसरी तरफ खड़ा हो गया। वो बेचैन तो नजर आ रहा था, लेकिन उसने अरुणिमा के साथ जबरदस्ती करनी छोड़ दी थी। तभी लिफ्ट रुकने की आवाज आई। अरुणिमा को थोड़ी राहत महसूस हुई कि कम से कम कुछ समय के लिए वो सुकून से सांस तो ले पाएगी। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, आस्तिक ने अरुणिमा की कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। अरुणिमा एकदम चौंक गई और आस्तिक को देखने लगी। आस्तिक अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बोला, मुस्कुराओ। अरुणिमा समझ गई कि वो उसे क्यों मुस्कुराने के लिए कह रहा है। लिफ्ट का दरवाजा खुलने से पहले उसने जबरन अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान ला ली, और जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी सोच के मुताबिक सामने मीडिया के कुछ लोग खड़े थे जो आस्तिक और अरुणिमा की तस्वीरें लेने लगे। आस्तिक ने अरुणिमा का हाथ पकड़ा और उसे सीधे अस्पताल से बाहर ले आया। पार्किंग में गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, लेकिन साथ ही आस्तिक की बेचैनी भी। अरुणिमा का ध्यान सिर्फ अपनी माँ की बातों पर था। वो इस वक्त ये सोच भी नहीं रही थी कि होटल पहुंचते ही उसका क्या हश्र होने वाला है। जैसे ही गाड़ी होटल की पार्किंग में रुकी, आस्तिक तेजी से उतरा और अरुणिमा को खींचते हुए अंदर ले जाने लगा। अरुणिमा बार बार लड़खड़ा रही थी, लेकिन आस्तिक ने उसकी परवाह नहीं की। जैसे तैसे उनका कमरा आ गया। दरवाजा बंद होते ही अरुणिमा ने राहत की सांस ली ही थी कि आस्तिक ने उसे खींचकर सीधे सोफे पर गिरा दिया। अगले ही पल उसने अरुणिमा की साड़ी एक झटके में खींचकर अलग कर दी। अरुणिमा समझ गई थी कि इतनी देर से खुद को कंट्रोल कर रहा यह आदमी अब और इंतजार नहीं करेगा। एक बार फिर वही दर्द, वही घुटन, वही तड़प। अरुणिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन काउंटिंग करने लगी कि कब ये सब खत्म होगा। लेकिन जब आस्तिक ने उसे आंखें बंद करते देखा, तो वो उसके चेहरे के पास आया और ठंडी सांस छोड़ते हुए सरगोशी भरी आवाज में बोला, अपनी आंखें खोलो। लेकिन अरुणिमा ने अपनी आंखें और कसकर बंद कर ली। आस्तिक ने उसकी कलाई और कसकर पकड़ ली और उसके नाजुक से शरीर पर अपना भारी भरकम वजन डालते हुए कहा, मैंने कहा ना, आंखें खोलो। मैं चाहता हूं जब मैं तुम पर अपना दावा करूं तो तुम्हें पता हो कि तुम्हारा मालिक कौन है। उसके शब्दों में इतनी मजबूती थी कि अरुणिमा अपनी आंखें खोलने से खुद को रोक नहीं पाई। दोनों की निगाहें मिली और एक गहरा आई कॉन्टैक्ट बना। दोनों की सांसें तेज हो गई थी और दोनों ही अपनी उत्तेजना में बह रहे थे। सब कुछ खत्म होने के बाद अरुणिमा हैरानी से देख रही थी कि आस्तिक के सबसे नजदीक जो चीज पड़ी थी वो उसकी साड़ी थी, जो पूरी तरह खराब हो चुकी थी।
आस्तिक गहरी सांस लेते हुए खड़ा हुआ और अपने कपड़े पहनने लगा। अरुणिमा भी जल्दी से खुद को संभालने लगी। जब उसने अपने ब्लाउज के हुक लगाने के बाद अपनी साड़ी की हालत देखी तो हैरान रह गई। उसने आस्तिक को घूर कर देखा, लेकिन आस्तिक ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, डोंट वरी, तुम्हारे लिए दूसरी साड़ी मंगवा दूंगा। अरुणिमा की हैरानी साड़ी के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए थी कि आस्तिक ने उसकी साड़ी क्यों फाड़ी। वो असमंजस में उसे देखने लगी। आस्तिक बेड के सिरहाने बैठकर फोन निकालने लगा। उसने सिगरेट चलाई और फोन में कुछ करने लगा, जिससे उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष नजर आ रहा था। अरुणिमा सोफे पर बैठी उसे घूर रही थी। 10 मिनट बाद बिना उसकी तरफ देखे आस्तिक बोला, माना कि मैं बहुत हैंडसम हूं, लेकिन इतनी शिद्दत से देखोगी तो मुझसे प्यार हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम सारी जिंदगी पछताओगी। अरुणिमा का ध्यान टूटा और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। नकली खांसी के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए उसने हल्की निगाहों से आस्तिक को घूरना जारी रखा, मगर आस्तिक के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसने धुएं को हवा में उड़ाया और ठंडे स्वर में कहा, पूछो जो पूछना है। तुम क्या करना चाहते हो? अरुणिमा ने आखिरकार सवाल पूछ ही लिया। आस्तिक के हाथ फोन पर रुक गए। उसने गहरी नजरों से अरुणिमा को देखा। अरुणिमा का सवाल अब भी हवा में था। वो आस्तिक को देखते हुए बोली, अभी अभी तुमने क्या किया और ऐसा क्यों कर रहे हो? आस्तिक के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभरी। उसने उल्टा सवाल कर लिया, मैंने क्या किया? अरुणिमा जानती थी कि यह आदमी कितना देशरम है। खुद सामने से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, लेकिन जब सामने वाला इतना ढीठ है तो वो शर्म में रहकर कौन सा इनाम जीत लेगी? गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, तुम्हारा मकसद मुझे प्रेग्नेंट करना था ताकि तुम्हें अपने पिता से माफिया की गद्दी मिल सके, और जब से ये सब शुरू हुआ है तब से हर बार तुमने यही चाहा कि मैं गर्भवती हो जाऊं। तो अब अचानक ऐसा क्यों किया तुमने? आस्तिक ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर लापरवाही से बोला, क्योंकि मैंने अपना इरादा बदल दिया है जान, अब मैं नहीं चाहता कि तुम प्रेग्नेंट हो। अरुणिमा हैरान रह गई। उसने बड़ी बड़ी आंखों से आस्तिक को देखा। आस्तिक ने सिगरेट बुझाई और अपनी जगह से उठकर धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, आज मैंने तुम्हें गौर से देखा, बहुत खूबसूरत कमर है तुम्हारी। अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो ये कमर कमर नहीं रहेगी, तुम्हारी खूबसूरती बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैंने फैसला किया है, तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी, तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी, इसी तरह मुझे संतुष्ट करती रहोगी। मैं तुम्हारी आदत डाल चुका हूं और मैं अपनी ये आदत खराब नहीं करना चाहता। तुम्हारे इस तराशे हुए बदन को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। अरुणिमा का मुंह खुला का खुला रह गया। यह आदमी इतना घटिया कैसे सोच सकता है? वो उसे सिर्फ एक इस्तेमाल करने लायक खूबसूरत चीज बनाकर रखना चाहता था, जो बस उसके शौक पूरे करे। अरुणिमा के हाथ कांपने लगे। डरते हुए उसने कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि तुम्हें माफिया की गद्दी तभी मिलेगी जब तुम्हारा बच्चा होगा। तो अब क्या, तुम्हें वो कुर्सी नहीं चाहिए? आस्तिक ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल चाहिए। वो गद्दी मेरी ही है और हमेशा मेरी रहेगी। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें प्रेगनेंसी के लंबे सफर और डिलीवरी के दर्द से नहीं गुजरना होगा। तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, मुझे खुश रखना। और जहां तक बच्चे की बात है, आस्तिक आगे बढ़ा, उसके लिए एक सरोगेट मदर होगी जो मेरे बाप को उनका वारिस देगी। इससे एक तीर से दो निशाने लगेंगे। पहला, मुझे माफिया की गद्दी मिल जाएगी, और दूसरा, तुम अपनी कीमत चुकाओगी। अरुणिमा अविश्वास से उसे देख रही थी। आस्तिक उसके करीब आया, उसकी ठुड्डी पकड़कर बोला, तुम्हारी कंपनी बचाने के लिए मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसकी कीमत तुम्हें अपने इस खूबसूरत जिस्म से चुकानी होगी।